आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज।
आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज की खास पेशकश मोहब्बतें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनामिका और आइए आज सुनते हैं सहबा जाफरी की लिखी कहानी और वसंत आ गया। खूब सारी बारिश से ताजा हुए मधुमालती के गुच्छों ने ज्योति का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो उछल उछल कर उन्हें तोड़ने की नाकाम कोशिश करने लगी। सहसा एक हाथ ने डाली झुका फूल तोड़ दिए। ये क्या, बारिश से बोझिल हुए फूल खुशबू के कतरों के साथ ज्योति की मांग में बिखर गए। निश्चित रूप से ये जय ही थे। फूल तो पहले ही बिखर गए थे, वो डंठल हाथों में पकड़ शरारत से मुस्कुरा रहे थे। ज्योति खिलखिलाकर तुलसी दल को शीश नवाते हुए अतीत में खो गई। वो एक मध्यम वर्गीय सांवली सलोनी लड़की थी जो सपने भी डर डर के देखा करती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, हिरणी सी चंचल चितवन और दूध में घुलते शहद सी सुनहरी रंगत उसे बड़ा पूर्ण सौंदर्य प्रदान करती थी। उस पर यदा कदा जब वो अपनी घनी घुंघराली केश राशि खुली छोड़ दिया करती थी तो सावन के संवलाए दिनों सी ही मादक हो जाया करती थी। पर वो अज्ञात यौवना थी। घर बाहर की जिम्मेदारियों को अपनी पायल के घुंघरुओं में पिरो जैसे उसने राग की भांति अपने जीवन ताल में ढाल लिया था। उसके जीवन में तो चटकने मटकने को अवकाश ही नहीं था। प्रेम का प्रथम आलम्बन माँ, उन्हें तो उसने अल्पायु में ही खो दिया था। इसी से जिस उम्र में माएं अपनी बेटियों के केश गूंथा करती है, वो उस उम्र में अपने घर के लिए खुद माँ बन बैठी थी। माँ की असमय मृत्यु और राज्य परिवहन निगम के निजीकरण के चलते पिताजी ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली थी। वे एकाकी हो चले थे, गृहस्थी के कामों के प्रति एकदम उदासीन। इसी से ज्योति और अधिक सयानी हो चली थी। राम रतन, तुम ब्याह क्यों नहीं कर लेते? मोहल्ले भर की बुढ़िया औरतें जब चिंता जताती तो उनका जवाब होता, सौतेली माता लाकर बच्चों का जीवन नरक करना है क्या? दिन ऐसे ही स्कूल, घर, अपने भाई बहनों की देखरेख और पिताजी के स्वास्थ्य की चिंता में निकल रहे थे। जिस उम्र में उसकी सखियां सड़कों और सिनेमा घरों में होती थीं, वो मंदिर की मीरा सी घर के आंगन में बैठ बजट दुरुस्त किया करती थी। उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि कहीं किसी मोड़ पर कोई ऐसा आएगा जिसके कंधे का सहारा ले ज्योति फफक फफक कर रो लेगी। ये कॉलेज में दाखिला लेने का पहला दिन था। उसने अपने बालों को कसकर जूड़े की शक्ल में बांधा हुआ था। जल्दी जल्दी फॉर्म भर लोकल बस में बैठ उसे घर की तरफ रवाना होना था कि बगल की सीट पर वो भुट्टा खाता हुआ आ बैठा। उसने भुट्टे को ज्योति की तरफ बढ़ाया। वो उन्हें कॉलेज में देख चुकी थी। उसे न तो भुट्टे में कोई दिलचस्पी थी, ना ही भुट्टा खाते व्यक्ति में। वो तो बस ये सोच रही थी कि घर पर आज क्या बनेगा। रास्ते से दूध सब्जी लेकर जाना है और छोटी का होमवर्क भी बाकी है। पर पास बैठकर भुट्टा खाने वाला व्यक्ति इसी तरह पूरा साल घर वापसी के समय पास बैठकर भुट्टा खाता रहा। यहाँ तक कि भुट्टे का मौसम भी चला गया। ज्योति ने कभी उससे बात करने की कोशिश भी नहीं की। उसको तो बस घर जाकर अपने घर को संभालने की जल्दी थी। आखिर वो एक जिम्मेदार लड़की थी। पर जिम्मेदार लड़की पर भुट्टा खाने वाले लड़के को जैसे प्यार सा आने लगा था। वो खुद अव्वल आने वालों में से था, समझदार था और कॉलेज की राजनीति में गहरी पकड़ रखने के साथ साथ सारे कामों में माहिर। वो ज्योति का सीनियर जय था। जय ज्योति के संघर्षों को आसान करने में जैसे जुट जाया करता था। ज्योति के असाइनमेंट, ज्योति का एग्जामिनेशन फॉर्म, ज्योति के नोट्स, एक्स्ट्रा क्लास के बाद 7:30 की लास्ट लोकल के लिए ज्योति के साथ रुकना। कभी कभी जब ज्योति अपना लंच नहीं बना पाती, जय न जाने कैसे जान जाता था, बगैर कुछ कहे उसके लिए कुछ पैक करवा लाता। ज्योति सम्मान के अतिरेक में उन्हें जय जी ही कहा करती थी। न जय कुछ कह पाते, न ज्योति कुछ समझ पाती। पर प्रेम छुपाए नहीं छुपता। एक लंबा अरसा जय कॉलेज नहीं आए। एक हफ्ता ज्योति के लिए तो लंबा अरसा ही था, तब डरती झिझकती ज्योति ने उनके घर पर फोन लगाया। उनकी माँ से मालूम हुआ जय को मलेरिया हुआ है। ज्योति को इतना लंबा अरसा कभी बुखार नहीं आया था। उसे जय का मलेरिया तो इतना भयानक लग रहा था मानो महामृत्युंजय का पाठ ही कर डाले। वो बस रात दिन जय के ख्यालों में खो जाया करती थी। यहाँ वो मिले थे, यहाँ सीढ़ियों पर बैठते थे, वो इस इमली के पेड़ के नीचे नोट्स बनाते थे, वगैरह वगैरह। न लेक्चर में ध्यान लगता, न घर के कामों में। धूप जो कपड़े सुखाने को निकलती थी उसे जय की याद दिलाने लगी थी। बारिश जो आंगन धुलने के लिए होती थी उसमें जय की यादों की मिठास। सूरज जो क्लोरोफिल भूनकर पत्तियों का खाना बनाने आता था आजकल जय की यादें लाता है। और शाम जो थक कर सोने का इशारा देती थी जय के ख्यालों से बोझिल हो जाया करती थी। सर्दी गर्मी आषाढ़ सावन सबके सब उसके लिए तो बस काम करने का मौसम थे, पर उन पर आजकल जय की यादों का पतझर चल रहा था। वो 8 दिन ज्योति के लिए 8 युग थे। वैसे भी कॉलेज में ये जय का आखिरी साल था, फिर तो उसे जय के बगैर ही जीना है। सोच कर ही उसका मन कच्चा कच्चा हो आया। हे भगवान, आज 9वां दिन है, वो अगर आज भी नहीं आए तो प्राण ही निकल जाएंगे। उसकी आंखें गीली हो गईं। सहसा किसी ने कंधा छुआ। शुक्र है भगवान का, ये जय ही तो थे। उसका हाथ पकड़ उसे पारिजात के वृक्षों तले ले आए थे। ज्योति, देखो मुझे घुमा फिरा कर कहना नहीं आता, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बोलो ना, क्या जीवन भर जय की ज्योति बनकर रहोगी? लेकिन आपके घर वाले? ज्योति ने संक्षेप में पूछा। मैंने अपने घर वालों से पहले ही कह दिया था कि मेरा पूछते हुए अगर किसी लड़की का फोन आए तो आप समझ लेना कि वो आपकी बहू होगी। ज्योति को लाज सी आने लगी थी। झिझक मिटाने हेतु उसने पारिजात तोड़ने की कोशिश की, पर जय ने ज्यों ही टहनी झुकाई सारे फूल ज्योति की मांग में बिखर गए। तब ज्योति ने पहली बार जाना था बसंत क्या होता है, और अब ऐसा लगता है मानो वसंत उसकी दहलीज पर ठहर सा गया है हमेशा हमेशा के लिए। ज्योति मुस्कुराकर तुलसी अभिवादन करने लगी मानो कह रही हो, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर आंगन और ऐसे प्यारे साजन के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। सुनते रहिए अमर उजाला आवाज़।